अध्याय आठ, हिंद महासागर, विश्व भू राजनैतिक परिप्रेक्ष्य, सामान्य परिचय। ब्रिटिश राजनैतिक भूगोलवेत्ता एच जे मैकिंडर ने 1904 से 14 में अपनी प्रसिद्ध संकल्पना जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री का प्रतिपादन किया। इन्होंने पूरे विश्व को कुल दो बृहद भागों में बांटा। पहला, संपूर्ण पृथ्वी के 9/12 भाग पर विस्तृत केवल एक महासागर, तथा दूसरा, पृथ्वी के 2/12 भाग पर विस्तृत विश्व महाद्वीप। विश्व के शेष 1/12 भाग में कई छोटे छोटे द्वीप आते थे, जिनमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका भी थे। विश्व महाद्वीप के अंतर्गत सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नाजुक स्थिति पिवोट एरिया की थी। इसमें यूरेशिया का उत्तरी आंतरिक भाग, आज का सोवियत संघ तथा अन्य यूरोपीय समाजवादी देश आता था। मैकिंडर की इस विलक्षण संकल्पना का सार इस प्रकार था, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, हृदय स्थल पर शासन करता है। जिसका आधिपत्य हृदय स्थल पर है, वह विश्व महाद्वीप पर आधिपत्य रखता है। जिसका विश्व महाद्वीप पर प्रभुत्व है, उसका विश्व पर प्रभुत्व है। हिटलर के दार्शनिक सलाहकार कार्ल हाउसोफर ने अपने अंतःस्थल की गहराइयों तक ग्रहण कर लिया, तथा यह निश्चित किया कि जर्मनी ही वह देश है जो हॉटलैंड पर शासन करेगा, रिमलैंड पर आधिपत्य रखेगा, तथा ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री होगा। रिमलैंड से तात्पर्य हृदय स्थल के चारों ओर स्थित देशों, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, दक्षिणी एशिया तथा मध्य पूर्व से था। इस प्रक्रिया का शिकार बना इस संकल्पना के प्रतिपादक मैकिंडर का देश ब्रिटेन। फलस्वरूप प्रथम विश्वयुद्ध की नींव पड़ी, परंतु जर्मनी का हृदय स्थल पर शासन करके विश्व पर शासन करने का स्वप्न साकार न हो सका। इससे इस सिद्धांत का महत्व कम न हुआ, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जे एफ डगलस, बाद में निक्सन व किनसिंगर ने इसे अधिक महत्व दिया। फलस्वरूप हाउसोफर के रिमलैंड के अनुसार कम्युनिज्म के को सीमित रखने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर से भूमध्य सागर तक स्थान स्थान पर फौजी चौकियां स्थापित कर नियंत्रण रखने का उपाय रचा गया। 1947 में फिलीपाइन से संयुक्त राज्य की मिलिट्री संधि हुई। 1951 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की संयुक्त राज्य से अंजुम संधि हुई। 1953 में दक्षिणी कोरिया से परस्पर सुरक्षात्मक दृष्टि से हुई संधि के अनुसार वहां संयुक्त राज्य मिलिट्री की उपस्थिति वैध करार दी गई। लाओस, कंबोडिया व दक्षिणी वियतनाम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपाइन में संधि हुई। दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन व पाकिस्तान में 1960 की संयुक्त राज्य व जापान की सुरक्षा संधि तथा एस्पेक संधि के कारण जापान व मलेशिया भी मैदान में आ गए। इसी अंतर्निहित भावना के कारण पश्चिम में बगदाद तथा सेंटो संधियां हुई, तथा डलेस की इन कार्यवाहियों को ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य उपनिवेश निर्माणकर्ता सहायक देशों का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार मैकिंडर का सिद्धांत पूरे विश्व की यात्रा करके अपने जन्मदाता देश में वापस आ गया। डलेस का सिद्धांत इस बार पुनः धराशायी हो गया। संयुक्त राज्य तथा इसकी कठपुतली शक्तियों के विरोध का वियतनाम वासियों ने वर्षों तक दृढ़तापूर्वक सामना किया तथा विजय पाई। इसके तुरंत बाद ही लाओस तथा कंबोडिया द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया की फौजी छावनियों को नष्ट कर देने से इस क्षेत्र में इनका प्रभाव बहुत कम हो गया। इस प्रकार इनकी पश्चिमी एशिया व अफ्रीका में स्थिरता कभी भी वापस न आने के लिए समाप्त हो चुकी है। इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता तथा गुटनिरपेक्षता की शक्तियां हावी हो चुकी हैं। ऐसी ही परिस्थितियों ने पश्चिमी गुट को, जिसका शीर्षस्थ नेतृत्व संयुक्त राज्य के हाथ में है, अल्फ्रेड महान की 1890 की कृति इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री की ओर उन्मुख किया। महान ने अपनी पुस्तक में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया है कि विश्व की प्रथम आवश्यकता महानगरों पर नियंत्रण है, तथा जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है उसका एशिया पर आधिपत्य है। यह महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। 21वीं सदी में विश्व का भाग्य इसके जल द्वारा ही निश्चित होगा। फलस्वरूप ये हिंद महासागर में पुनः एकजुट होकर एक नवीन व्यू की रचना में जुट गए हैं। इसी प्रयत्न में संयुक्त राज्य पॉलिटिको मिलिट्री अफेयर के डायरेक्टर सेमूर विंस ने 1974 में नियर ईस्ट व साउथ एशिया के विदेशी मामलों की गृह कमेटी में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किया है, भौगोलिक दृष्टि से हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण जल निधि है जो संयुक्त राज्य को परिवहन हेतु, चाहे वे व्यापारिक हों अथवा मिलिट्री, अवश्य उपलब्ध रहे। हमें विश्वास है कि संयुक्त राज्य की सेनाओं की हिंद महासागर में निरंतर उपस्थिति से सामरिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिसका बड़ा कल्याणकारी प्रभाव होगा, तथा हमारे कूटनीतिक प्रयत्नों से हमारे राष्ट्र के हित में और वृद्धि होगी। यह समझना कठिन नहीं होगा कि हिंद महासागर में सामरिक गतिविधियों के अनेक अर्थों में से बहुराष्ट्रीय निकायों, जिनके इस क्षेत्र में अरबों डॉलर लगे हैं, के लाभ की सुरक्षा के साथ साथ हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को ब्लैकमेल करना व धमकी देना भी सम्मिलित है। सामरिक गतिविधियों के लिए ही इस संकट के प्रत्येक क्षणों में अपनी जल सेना द्वारा संबंधित देशों के लिए बाधा उत्पन्न करना इन शक्तियों के लिए आम बात हो गई है। चाहे मिस्र इजराइल युद्ध हो या मेडागास्कर में संकट, नवंबर 1974 में सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, तथा ब्रिटेन व दक्षिणी अफ्रीका की सम्मिलित जलसेना द्वारा साइमंस टाउन अड्डे के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न कर मोजाम्बिक व अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम को धमकी देना था। दिसंबर 1971 में भारतीय उपमहाद्वीप में संघर्ष, बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम के समय संयुक्त राज्य ने कृतिक बल टास्क फोर्स 74 भेजा, जिसमें यूएस इंटरप्राइज, ट्रिपोली हेलीकॉप्टर वाहक तथा विध्वंसक जलयान, डिस्ट्रॉयर्स तथा युद्धपोत सम्मिलित थे। यह संयुक्त राज्य के 7वें बेड़े का एक अंग था, जो टोंकिन की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। इसके लिए तर्क यह दिया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान स्थित विदेशियों को निकालना था, जबकि वास्तविकता यह थी कि भारत ने यूएस कृतिक बल के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से 3 दिन पहले ही ढाका पर बम वर्षण का प्रोग्राम स्थगित कर दिया था। वास्तव में तो शक्ति प्रदर्शन तथा भारत का पूर्वी पाकिस्तान के विरुद्ध अवरोध तोड़ना इनका उद्देश्य था। ऐसा ही परिस्थिति में सोवियत संघ ने भी हिंद महासागर में अपनी पहले से उपस्थित नौसेना में एक न्यूक्लियर तथा 2 अंतः समुद्री युद्धपोतों की वृद्धि की। और कुछ हो या न हो, इतना तो निश्चित ही है कि यदि संयुक्त राज्य विश्व के द्वितीय सबसे बड़े तथा हिंद महासागर के सबसे बड़े देश को छोटी मोटी बातों पर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर सकता है, तो कौन देश बाह्य शक्तियों द्वारा वास्तविक या काल्पनिक लाभ हेतु ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हिंद महासागर में बाह्य शक्तियों की रुचि एवं प्रतिस्पर्धा के कार्य कारण, स्पष्टतः हिंद महासागर में शक्तियों की पर्याप्त रुचि एवं प्रतिस्पर्धा गत कुछ ही दशकों में बढ़ी है, जिसके कार्यकरण के व्याख्योपरांत निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आए हैं। पहला, हिंद महासागर के मानव, खनिज तथा कृषि संसाधन। उल्लेखनीय है कि इसके आसपास के देशों में दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। यह विशाल मानव संसाधन विपुल श्रम का क्षेत्र होने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण बाजार का भी निर्माण करता है। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका से दक्षिणी एशिया तक तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है। इनमें विश्व के कुछ सबसे सघन प्रदेश तथा कुछ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में स्थित हैं। हिंद महासागर और इसके तटवर्ती राज्य मिलकर विकासशील या तीसरी दुनिया के सबसे बड़े भाग का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र के राज्यों की कुछ सामान्य विशिष्टताएं और समस्याएं हैं। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ये सभी राष्ट्र विकासशील हैं। इनमें से बहुत थोड़े एक सशक्त राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित हो पाए हैं। किसी न किसी स्तर पर ये सभी आर्थिक एवं सामाजिक दबावों से जूझ रहे हैं। जैसा कि अध्याय एक में बताया जा चुका है, यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से अति संपन्न है। इंडोनेशिया को मिलाकर विश्व में संभावित तेल भंडार का लगभग 3/4, यूरेनियम का 2/3, सोने का 80.7%, हीरे का लगभग 70%, टिन का 56.6%, क्रोम का 50%, मैंगनीज का 35%, बॉक्साइट का 30% और लौह तथा तांबे का 20% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयला, लिग्नाइट, निकिल, जिंक तथा सल्फर भी उपलब्ध हैं। कृषि उत्पादों में भी यह क्षेत्र पर्याप्त संपन्न है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का लगभग 45%, 90% प्राकृतिक रबर, 20% चीनी एवं कपास, 16% तंबाकू, 15% गेहूं एवं कहवा, 11% मक्का तथा 12% मत्स्य उत्पादन इस क्षेत्र से भी प्राप्त होता है। अमेरिका इस क्षेत्र से कम 40 प्रकार का कच्चा माल आयात करता है, जिनमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यूरेनियम, मीथियम, बोरिलियम तथा जीवोकोनियम भी शामिल हैं। दूसरा प्रमुख व्यापारिक मार्ग। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का सबसे सस्ता साधन सामुद्रिक जल परिवहन है। इस दृष्टि से हिंद महासागरीय क्षेत्र यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशनिया को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों का हृदय स्थल है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई सागरों, भूमध्य सागर एवं दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर में होकर अटलांटिक महासागर में प्रवेश एवं निकास को नियंत्रित करने वाले सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सकरे जल डमरू मध्यों के अंतर्गत लोम्बोक जल डमरू मध्य लंबाई 35 नॉटिकल मील, चौड़ाई 11 नॉटिकल मील, मकस्मर जल डमरू मध्य लंबाई 140 नॉटिकल मील, चौड़ाई 52 नॉटिकल मील, सुंडा जल डमरू मध्य लंबाई 48 नॉटिकल मील, चौड़ाई 2 नॉटिकल मील, सिंगापुर एवं मलक्का जल डमरू मध्य, निकोबार द्वीपों एवं सुमात्रा के मध्य का ग्रेट चैनल, मालदीव द्वीप श्रृंखला के मध्य की 1.5 डिग्री एवं 8 डिग्री चैनल, हार्मुज जल डमरू मध्य, बाब एल मैंडेब तीरन एवं जुबल जल डमरू मध्य तथा मोजाम्बिक जल डमरू मध्य आते हैं। खाड़ी से जापान जाने वाले बड़े आकार के भारी टैंकर लोम्बोक मकस्मर जल डमरू मध्य से आते हैं। तटवर्ती देशों के लिए जीवन दायनी है। इससे होकर इनके कच्चे एवं तैयार सामानों का निर्यात होता है तथा उन्नत कोटि की तकनीक वाले यंत्रों का आयात होता है। मुख्य सागरीय मार्गों की दूरी निम्न है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी देशों को चारों ओर घेरने के लिए संपूर्ण विश्व के 19 देशों में 60 सैनिक अड्डे स्थापित किए तथा सऊदी अरब सागर में नाभिकीय पनडुब्बियां भेजी, जहां से आवश्यकता पड़ने पर सोवियत संघ के तलपेट में सीधा आघात किया जा सके। 1968 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने स्वेज नहर से पूर्व अपनी काफी सैनिक शक्ति को वापस बुला लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस ने हिंद महासागरीय प्रदेश में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस समय चीनी नौसेना भी हिंद महासागरीय प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है तथा प्रदेश के राष्ट्रों को शस्त्रापूर्ति करने वाली एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही है। 1970 के दशक में ईरान, इथियोपिया तथा यमन की राजनीतिक अस्थिरता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंद महासागर में नौसैनिक गश्ती बढ़ गई थी। इसी समय ईरान, इराक के मध्य पवित्र युद्ध, जो बाद में खाड़ी युद्ध में परिवर्तित हो गया, के दौरान तेल के मूल्यों में वृद्धि ने पुनः विश्व की अस्थिरता में और भी वृद्धि कर दी। अप्रैल 1978 में ईरान तथा इराकी मिलिट्री ने फारस की खाड़ी में आने वाले कई व्यापारिक जलयानों पर आक्रमण किया, जिससे भारी जनधन की हानि हुई। 14-15 मई 1988 को इराकी जहाज़ों ने ईरान के लरक द्वीपों में के तेल भंडार पर स्थित 5 जहाज़ों को उड़ा दिया। अवरोधी बिंदु चोक पॉइंट मई 1987 में बहरीन के उत्तर अंतर्राष्ट्रीय जल में USS स्टार्क पर इराकी जेट के 106 मिसाइल द्वारा आक्रमण तथा कुछ अन्य घटनाओं जैसे ओमान तथा फारस की खाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय जल की सतह के ऊपर, नीचे या समीप खदानों का निर्माण, हार्मुज जलडमरू मध्य का फा प्रायद्वीप के नाजुक ठिकानों पर सिल्क वर्म मिसाइल की स्थापना, व्यापारिक एवं नौसैनिक जलयानों पर आक्रमण तथा खाड़ी में तेल निकालने वाले प्लेटफार्मों के समीप सेनायुक्त कीलों के निर्माण में सशंकित कुवैती सरकार ने अपने जलयानों को अमेरिकी झंडे के नीचे चलाने का पंजीकरण कर लिया। सोवियत रूस ने भी कुवैती सरकार को अपने कुछ टैंकर उधार दिया। खाड़ी से आने वाले मार्ग को पक्की तौर पर खुला रखने के लिए 1987 के मध्य में ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की टुकड़ियों को प्रदेश में गश्त के लिए भेजा गया। संयुक्त राज्य की नौसेना का टास्क फोर्स ओमान की खाड़ी में गश्त करता है, जबकि ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी जलयान खाड़ी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया भी छोटे पैमाने पर अपने नौसैनिक गोताखोरों को ट्रबुल्ड प्रदेश में भेजकर सहायता करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदेश के कई तटवर्ती राष्ट्रों में नौसैनिक सुविधाएं प्राप्त हैं, केनिया में मोम्बासा, सूडान में पोर्ट सूडान, सऊदी अरब में जेद्दा, ओमान में सलालाह, मसीरा एवं मस्कट, बहरीन में मनामा, पाकिस्तान में कराची, श्रीलंका में कोलंबो, थाईलैंड में सातहीप, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया में काकबर्न साउंड। संयुक्त राज्य अमेरिका को हवाई सुविधाएं बेरेनिस मिस्र, हरगिसा सोमालिया, ओमान के कई स्थानों पर, मोम्बासा केनिया तथा उटापो थाईलैंड में प्राप्त हैं। इसे अपने B-52 तथा KC-135 टैंकर उड़ानों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अड्डों लियरमंथ, पियर्स तथा डार्विन की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा रेनियो स्थित फ्रांसीसी सेनाओं से संबंध रख सकता है। काकस या कीलिंग द्वीपों पर ऑस्ट्रेलिया की वायु एवं संचार सुविधाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य संबंधित शक्तियों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। यह हिंद महासागरीय बेसिन के एक विशाल भाग के वायु यातायात नियंत्रण का केंद्र भी है। वस्तुतः अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस के मध्य हुए समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को संधियों के अंतर्गत कोमोरो, काकस, किलिंग द्वीपों तथा सेसेल्स के अल्दाब्रा तथा फुरकुहार द्वीपों पर नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के अतिरिक्त माहे द्वीप में ला मसीरे नामक स्थान पर उपग्रह अनुवर्तन केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्राप्त है, जिससे उसके हिंद महासागर से संबंध स्टार वार प्रोग्राम को नई दिशा मिलेगी। अब यह रहस्य नहीं रहा कि हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के 30 सैनिक अधिष्ठान, 1500 युद्धपोत, 80 जलयान, 3 नाभिकीय पनडुब्बियां तथा त्वरित तैनाती सेना के 230,000 सैनिक हैं। मॉरिशस के लागोस द्वीप समूह एवं डीगो गार्सिया पर भी कब्जा करने का उद्देश्य सामरिक ही है। इसके युद्धपोतों पर विशाल मात्रा में युद्ध सामग्री तथा हिंद महासागर के हृदय स्थित डीगो गार्सिया के विशाल नौसैनिक अड्डे पर युद्धयानों की उपस्थिति विशेष रूप से चिंतनीय है। डीगो गार्सिया की स्थिति तो विस्फोटक है। लगभग 36 मील लंबे और मात्र चौथाई मील चौड़े इस द्वीप पर अमेरिका ने 12,000 टन फीट लंबी विमान पट्टी बना रखी है। इस पर तरह तरह के लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा वह 4 करोड़ डॉलर खर्च करके इस विमान पट्टी का आधुनिकीकरण कर रहा है ताकि इस पर B-52 किस्म के परमाणु बमवर्षक विमान उतारे जा सकें। यहाँ कम से कम 19 परमाणु हथियार तैनात किए जा चुके हैं। भारी युद्धपोतों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए डिएगो गार्सिया की खाड़ी को और भी 45 फीट गहरा किया गया है। अमेरिका ने अपने इस सैनिक अड्डे पर 50 करोड़ डॉलर खर्च करने का दीर्घावधि योजना बनाई है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर स्थित इसके सैनिक अड्डों पर उपग्रह वेधकों की संस्थापना तथा इन पर युद्ध यान वाहकों की उपस्थिति के अतिरिक्त डिएगो गार्सिया में सुदूर आकाशीय वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रकाशीय अनुवर्तन ऑप्टिकल ट्रैकिंग हेतु धरातल पर एक केंद्र में स्थापित करने की योजना है, जो उपग्रह वेधक शस्त्र प्रणाली की है भांति प्रयुक्त होगा। हिंद महासागर में सन 1990 तक ऐसी प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव है जो 24,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के उपग्रहों को मार गिराए। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की माहे द्वीप की योजना हिंद महासागर के राष्ट्रों के लिए महती चिंता का विषय है। दक्षिण अफ्रीका तो पहले से ही अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के देशों में को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है। डर्बन के विशाल नौसैनिक अड्डे के अलावा रिचर्ड्स की खाड़ी और वालफिस खाड़ी क्षेत्र में नए नए नौसैनिक अड्डे विकसित किए गए हैं ताकि पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सके। भारत के नौसैनिक अड्डे बंबई, गोवा, कोचीन, विशाखापत्तनम, तूतीकोरीन, पोर्ट ब्लेयर, निकोबार द्वीप एवं एक नया अड्डा करवर में है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अपेक्षाकृत छोटे नौसैनिक अड्डे क्रमशः कराची एवं चिट्टागांग में स्थित हैं। छोटी नौसेना विशेषतया गश्त करने वाली नौकाओं से युक्त बरीना के अड्डे बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर की लंबी तट रेखा पर सित्वे, बसीन, मोलमीन तथा मर्जीन में स्थित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश में इंडोनेशिया नौसैनिक दृष्टि से पर्याप्त शक्तिशाली है। इसका प्रमुख अड्डा सुराबाया पूर्वी जावा में है। अन्य अड्डे बेलवा एवं मेदान सुमात्रा, अम्बोन, तानजुंग, पिनांग एवं रेनाई द्वीप पर हैं। राजनैतिक दृष्टि से नाजुक सुंडा जलडमरू मध्य में सुमात्रा के दक्षिण पूर्वी छोर पर तेलुक रताई में भी एक अड्डा है। थाईलैंड के अन्य नौसैनिक अड्डे बने थैप, लामू, बैंकॉक तथा सोंखला में स्थित हैं। मलेशिया का मलय प्रायद्वीप पर स्थित बटरवर्थ हवाई अड्डा मई 1988 तक ऑस्ट्रेलिया द्वारा नियंत्रित होता था, पर अब यह मलेशिया वायुसेना के अधिकार में है। प्रायद्वीप पर इसका दूसरा अड्डा क्वांटम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1978 में के प्रारंभ में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी के विकास हेतु एक श्वेत पत्र जारी कर इसे प्रभावशाली टू ओशन नेवी बनाने पर बल दिया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत गार्डन द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के देश की कुछ नौसेना को स्थापित करना या नौसैनिक अड्डे काकबर्न साउंड के सुरक्षित गहरे एवं उत्कृष्ट बैकअप सुविधाओं से युक्त है। चौथा, हिंद महासागर में शास्त्रों की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटेन ही अकेली शक्ति थी जो हिंद महासागर के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी। यहाँ तक कि हिंद महासागर को ब्रिटिश झील भी कहा जाने लगा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति को भारी क्षति पहुंची और हिंद महासागर से उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका से 1947 में औपनिवेशिक साम्राज्य समाप्त होने पर तृतीय विश्व के रूप में कई तटीय राष्ट्रों की स्थापना हुई। साम्राज्यवादी शक्तियों के पतन के बाद इन नवनिर्मित तटीय राष्ट्रों ने हिंद महासागर के बारे में आवाज़ उठाई। हिंद महासागर में पश्चिमी देशों की रुचि कम नहीं हुई थी। इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए दोनों महाशक्तियों में होड़ शुरू हुई। इस समय हिंद महासागर में जो लगभग 100 विदेशी युद्धपोत तैर रहे हैं, उनमें करीब 45 युद्धपोत अमेरिका के, 20 सोवियत संघ के, 20 फ्रांस के और एक दर्जन से भी अधिक युद्धपोत ब्रिटेन के हैं। राजनयिक स्तर पर ऐसे देशों को फंसाने पटाने की भी होड़ मची है, जिनसे जमीन का एक टुकड़ा या लंगर डालने के लिए बंदरगाह लेकर इस विशाल समुद्री क्षेत्र का शोषण एवं प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। 1960 में इंडोनेशिया क्षेत्रीय समुद्री शक्ति बनने की होड़ में पड़ा। इस संदर्भ में जकार्ता ने सोवियत संघ से नए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे तथा निकोबार द्वीप समूह पर अपना दावा ठोककर उसने भारत को चकित कर दिया। 1965 के भारत पाक युद्ध में भी वह पाकिस्तान के साथ था। 1966 में सुकर्ण की सरकार के पतन के बाद भारत इंडोनेशिया के संबंधों में प्रगाढ़ता तो आई, लेकिन भारत को बर्मा और थाईलैंड की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। भारत का तटीय क्षेत्र लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है और आर्थिक समुद्री क्षेत्र 28,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारतीय आर्थिक समुद्री क्षेत्र में अरबों खरबों की प्राकृतिक संपदा छिपी है और इसे विश्व का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। हर साल 30,000 करोड़ रुपए के व्यापार के 95% माल का आवागमन इसी रास्ते से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद तक भारत विश्व की 8वीं नौसैनिक शक्ति माना जाता है। भारत के अलावा विश्व में सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास विमानवाहक युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना में 70 युद्धपोत, 50,000 सैनिक, 3 मिसाइल नाशक जहाज, 8 सोवियत निर्मित पनडुब्बियां, 2 टोही समुद्री जहाज और कई मरम्मत करने वाले जहाज भी हैं। भारत ने 6 और मिसाइल नाशक पोतों और 2 मिसाइल क्रूजर के लिए सोवियत संघ को तथा 6 पनडुब्बियों के लिए पश्चिमी जर्मनी को ऑर्डर दिया है। अपनी नौसैनिक शक्ति सुदृढ़ करने के साथ साथ भारत ने हिंद महासागर के तटीय देशों से सैन्य प्रशिक्षण संबंध भी स्थापित किए। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले राष्ट्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में राष्ट्रमंडलीय देशों को रखा गया है, जिनमें बोत्सवाना, घाना, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नाइजीरिया, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया हैं। दूसरे वर्ग में बर्मा और ओमान हैं तथा तीसरे वर्ग में ईरान और इराक हैं। पाकिस्तान भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। उसने अपनी थल सेना की एक बड़ी टुकड़ी सऊदी अरब और रियाद में तैनात की है। 30,000 से भी अधिक पाकिस्तानी अधिकारी, सलाहकार, विमान चालक, तकनीशियनों और प्रशिक्षक दल के रूप में लीबिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गत वर्ष मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि हिंद महासागर में नौसैनिक गश्त के लिए उसने अपने पूर्वी तट से पश्चिमी तट और उत्तरी तट के लिए योजना बनाई है। 15 वर्षों में पूरी होने वाली इस योजना के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 25 अरब रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इस राशि के ऑस्ट्रेलिया दूर तक मार करने वाले 5 और युद्धपोत, 17 आधुनिक पनडुब्बियां तथा 75 F/A-18 हार्नेट लड़ाकू विमान खरीदेगा। पता चला है कि हिंद महासागर की क्षेत्रीय सैन्य शक्ति बनने में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की गुप्त रूप से सहायता करेगा। 5वां, सामरिक मदों पर असंतुलित व्यय। हिंद महासागर में महाशक्तियों द्वारा सैन्य व्यूहन के परिणाम स्वरूप इसके परिमंडलीय राष्ट्रों को विश्व तथा प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य में अपनी ज्वलंत समस्याओं की उपेक्षा कर सामरिक मदों पर असंतुलित रूप से व्यय करना पड़ रहा है, जिसका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ अप्रासंगिक है, न होगा। पिछले 10 वर्षों के भीतर विश्व के सुरक्षा व्यय में 2 गुनी वृद्धि हुई है। इस समय यह संपूर्ण अफ्रीका के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 2 गुना तथा विश्व में विकास अनुदान कार्यक्रम पर होने वाले कुल व्यय से 17 गुना अधिक है। 1975 में सैनिक मदों पर कुल व्यय जहां $507 था, वहीं 1985 में बढ़कर यह $1,000 अरब से भी अधिक हो गया। स्टॉकहोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के हथियारों पर किया जाने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है। 1985 में इसमें 3.2% की वृद्धि हुई। विश्व के हथियारों पर कुल खर्च 1984 में $642.5 से बढ़कर 1985 में $663.12 हो गया। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियारों पर 1985 में $204.9 अरब व्यय किया, जबकि 1984 में यह राशि केवल $188 अरब ही थी। इस प्रकार मात्र 12 ही माह में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा व्यय में 8% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में सोवियत संघ का रक्षा व्यय 2.9% ही बढ़ा। 1984 में इसने हथियारों पर $142 अरब लगाया, जो 1985 में बढ़कर $146 अरब ही हुआ। स्पष्टतया शस्त्र शास्त्रों के व्यापार में अमेरिका व सोवियत संघ विश्व के सबसे बड़े व्यापारी हैं। फ्रांस तृतीय स्थान पर है, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली क्रमशः 4वें, 5वें तथा 6वें स्थान पर आते हैं। सिपरी की हाल में जारी की गई 17वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1985 में विश्व के कुल शस्त्र निर्यात का 66.7% अकेले इन दोनों देशों ने निर्यात किया। पश्चिमी यूरोपीय देशों का भाग 31.3% था। इन हथियारों के खरीदार मुख्यतया तृतीय विश्व के देश हैं, जो अपनी विकासशील आर्थिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर महंगे हथियारों की खरीदारी में अपना बहुमूल्य संसाधन लुटाते हैं। 1985 में विश्व की कुल जनसंख्या 4.67 अरब के लगभग 1/4 व्यक्ति रक्षा उत्पादन के कार्यों में लगे थे। लगभग इतने ही वैज्ञानिक तथा इंजीनियर सैनिक अनुसंधान तथा संबद्ध विकास कार्यों में रत थे। समृद्ध देशों का तो 5-10% तक आधारभूत कच्चा माल सैनिक उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए लगाया जा रहा है। यह विडंबना है कि एक ओर तो सैनिक मद में इतने बड़े पैमाने पर व्यय किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर विश्व के करोड़ों लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। संपूर्ण विश्व में निरक्षरता व खतरनाक बीमारियों से मुक्ति के मद में मात्र $20 अरब का खर्च भी एक हास्यास्पद तथ्य है। विश्व के सैनिक खर्च में विकासशील देशों का भाग 1970 में बढ़कर में 7.2% था, जो 1980 के दशक में बढ़कर 18% हो गया, और 1984 में केवल हथियारों पर इन देशों ने $117 अरब खर्च किया। 9 स्वतंत्र देशों में लगभग 1.5 करोड़ लोग सेना में सम्मिलित हैं तथा शस्त्र शास्त्रों के कुल आयात में इन देशों का भाग लगभग 75% है। इस देश में अब एक नया विकास यह हुआ है कि तृतीय विश्व के कुछ राष्ट्र स्वयं शस्त्र निर्माण करने लगे हैं, किंतु इस हेतु सामान्यतया वांछित अवस्थापना तत्वों के अभाव के कारण इन राष्ट्रों की समस्याएं जटिलतर हो गई हैं, क्योंकि ये न तो शस्त्रों के आयात को रोक पा रहे हैं, न ही सीमित साधनों का समुचित उपयोग कर पा रहे हैं। 6. परिमंडलीय राष्ट्रों में अंतः एवं आंतः प्रदेशिक प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागरीय परिमंडल के राष्ट्रों में वर्तमान अंतः एवं आंतः प्रदेशिक प्रतिस्पर्धा महाशक्तियों को स्वार्थ सिद्धि का वांछित अवसर प्रदान करती है। यह स्थापित सत्य है कि किसी भी राष्ट्र समाज में जहाँ जनसाधारण को राष्ट्रहित के निर्माण के लिए भाग लेने तथा न्यायोचित रूप से अर्जित आय में वांछित अंश प्राप्त करने का अवसर अप्राप्य होगा, अशांति एवं अस्थिरता अवश्यंभावी है। दुर्भाग्यवश इस समय विश्व में कुल 56 सैन्य शासित राज्य हैं, जिनमें अधिकतर दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हैं। ऐसे शासन में गिने चुने लोगों के हाथों में ही सत्ता की बागडोर रहती है, जो किसी विशेष देश के हित में अपनी विदेश तथा आर्थिक नीति में परिवर्तन हेतु धमकाए, खरीदे, हटाए या षड्यंत्र के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। इस समय विश्व विशेषकर संसाधन संपन्न छोटे राष्ट्र दो महाशक्तियों के हाथों खिलौना बना हुआ है। कुछ मामलों में तो विकासशील देशों के शिक्षित शासक, जो आंतरिक विरोध के कारण देश के हितों के विषय में निर्णय लेने में पहल नहीं कर पाते, स्वयं को सत्ता में स्थापित करने हेतु बाह्य विशेषकर दोनों महाशक्तियों से सुरक्षा समझौता कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ओर से हथियारों की आपूर्ति तथा दूसरी ओर से विभिन्न प्रकार की सैनिक सुविधाओं, अड्डों की स्थापना आदि के प्रावधान पर सुविधाजनक समझौता हो जाता है। ज्ञातव्य है कि तानाशाह या सैनिक शासन की अपेक्षा प्रजातंत्रीय व्यवस्था में राष्ट्र निर्माण का कार्य अधिक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चल सकता है। प्रायः तानाशाह सरकार में जनता में तनाव एवं दबाव बढ़ते बढ़ते हिंसा के विस्फोट का कारक बन जाता है, जैसा कि ईरान में हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के बहुत से शासन जागृत ज्वालामुखी के मुख पर बैठे प्रतीत होते हैं। सातवां, दक्षिण पश्चिम एशिया, शास्त्रास्त्र, व्यापार की मंडी। संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया इस समय द्वितीय शीत युद्ध के संघर्ष का क्षेत्र होने से शस्त्रास्त्र व्यापार की प्रमुख मंडी बन गया है। द्वितीय शीत युद्ध का संघर्ष, जिसका समय 1978 निर्धारित किया जा सकता है, अधिकतर विकासशील देशों के विभिन्न तनाव बिंदुओं एवं उच्च स्तरीय तकनीकी युक्त हथियारों की होड़ की ओर उन्मुख हो गया है। ये तनाव बिंदु दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा कैरेबियन प्रदेश में स्थित है, जिनमें अंतिम को छोड़कर शेष सभी हिंद महासागरीय परिमंडल में आते हैं। यह ध्यातव्य है कि इस शीत युद्ध में महाशक्तियों के दावे कम हैं, क्योंकि किसी भी संघर्षपूर्ण संकट के दौरान ये वहां से बिना अपमान की स्थिति के स्वयं को अलग कर सकते हैं, जबकि प्रथम शीत युद्ध में यूरोप में यह बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न था तथा वहां बात नाभिकीय संघर्ष तक पहुंच सकती थी, जिसका खतरा ये शक्तियां नहीं उठाना चाहती। फिर भी यूरोप के प्रथम शीत युद्ध की अपेक्षा द्वितीय शीत युद्ध के अनेक आयाम जटिल सिद्ध हुए हैं। विकासशील देशों में संघर्ष असंचरित, अनस्ट्रक्चर्ड है। अधिकतर संबंधित देश नव स्वतंत्र हैं तथा इनमें अवैधानिक प्रतिनिधि विहीन नेतृत्व है। स्थानीय संघर्षों में भी यहाँ के शासक महाशक्तियों को सम्मिलित कर लेते हैं, जो अपने अन्यथा स्वार्थ सिद्धि हेतु लालायित रहते हैं, जिससे इन देशों में सत्ता परिवर्तन के विप्लवकारी अस्थिर क्षणों में और भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इन प्रदेशों का विकास कई दशक पीछे हो जाता है। आगे इन तथ्यों की क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की गई है। आठवां, दक्षिण अफ्रीका। प्रमुख साम्राज्यवादी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय का कि दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की आपूर्ति न की जाए मानते नहीं प्रतीत होते। 1960 से 1970 के बीच इन्हीं देशों से दक्षिण अफ्रीका ने 1000 मिलियन डॉलर के हथियार मंगाए, तथापि इन्हीं लोगों की सहायता से इसने अपना खुद का एक विशाल आयुध कारखाना स्थापित कर लिया। लंदन इंस्टीट्यूट के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के सशस्त्र सैनिक 1974-75 में दुगुने होकर 1,10,000 तक पहुंच गए। इसका 70 करोड़ रुपए का सुरक्षा व आयुध बजट पिछले किसी भी समय से अधिक था, 2 साल पहले का दुगुना था तथा संपूर्ण बजट का 20% था। ब्रिटेन व संयुक्त राज्य हथियारों की इस आपूर्ति को तमाशाई की तरह देखते रह गए, जबकि फ्रांस व पश्चिमी जर्मनी दक्षिण अफ्रीका को हवाई जहाज, टैंक तथा हथियार आपूर्ति करने वाले प्रमुख देश हैं। इतना ही नहीं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की आपूर्ति करने में सबसे आगे है। इसी की सहायता से यहाँ जहरीली गैसें व रासायनिक हथियार ही नहीं बल्कि मिलिट्री के सहयोग से यह स्वयं भी आणविक हथियार तैयार करने लगा है। बदले में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी अपने न्यूक्लियर उत्पादन के लिए यूरेनियम, जिसका कि अफ्रीका प्रमुख उत्पादक है, प्राप्त करता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन भी साइमंस टाउन में अपना अड्डा स्थापित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ सीधा मिलिट्री संबंध स्थापित कर रहा है। ये इसके लिए तर्क यह देते हैं कि युद्ध की स्थिति में पश्चिमी देशों को केप मार्ग को, जिससे होकर यूरोपीय देश अपनी आवश्यकता का 80% पेट्रोलियम मंगाते हैं, सुरक्षित रखना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सुरक्षा संवाददाता के अनुसार, फारस की खाड़ी से होकर दक्षिण अफ्रीका को आने वाला सागरीय मार्ग इस समय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सागरीय मार्ग है। जॉन वास्टर्स के अपार्थिड शासन ने एक उत्तम कोटि की आधुनिक संचार व्यवस्था, जिसका नाम प्रोजेक्ट एडवोकाट है, साइमंस टाउन नौसैनिक अड्डे के समीप सिल्वर माइन में स्थापित किया है। यहाँ के राडार परतों पर पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व में बांग्लादेश तक एक एक मिनट का सभी व्यापारिक नौसैनिक व वायु परिवहन का लेखा जोखा प्रदर्शित होता रहता है। प्रोजेक्ट एडवोकाट का सीधा संबंध वाशिंगटन व लंदन से है तथा ऐसा विश्वास किया जाता है कि दोनों राजधानियां संपूर्ण लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए यहाँ के कंप्यूटरों को सैटेलाइट फोटोग्राफ्स प्रदान करती हैं। केप मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण तो है ही, पर दक्षिण अफ्रीका को हथियारों से लादने का यही एकमात्र कारण नहीं है। इसका लक्ष्य तो शीघ्र संभावित अफ्रीकी स्वतंत्रता व क्रांति से इस क्षेत्र के श्वेत साम्राज्य को बचाना भी है। नवा, जापान। जापान यद्यपि प्रशांत महासागर की शक्ति है, परंतु